ओम शांति। अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने? ज्ञान के सागर बाबा हमें बहुत उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है बहुत सुंदर श्रेष्ठ अलौकिक अनुभव करते जाना। उसका ये प्रमाण है, इतना जितना ज्ञान को हम समझते हैं उतना उतना अलौकिक अनुभव हमारे पास बढ़ते जाते हैं। और ऐसे अनुभवी आत्माएं आने वाले हलचल के वातावरण में भी अचल रहेंगे। उस माहौल में अनेक आत्माओं की सेवा करने की क्षमता भी उनके पास होगी। और ऐसे अनुभवी आत्माओं के द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता इस संसार में होगी, क्योंकि परमात्मा गुप्त है। उनकी प्रत्यक्षता इस संसार में कैसे होती है? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसे सुंदर रचना के माध्यम से परमात्मा की प्रत्यक्षता इस संसार में होगी। तो जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में अनुभवी बनते जाते हैं, वैसे वैसे माया हमें धोखा नहीं दे सकती। अनुभवी आत्माओं को माया चीटिंग नहीं कर सकती। तो जितने हम इस ज्ञान मार्ग में पुराने होते जाते हैं उतनी अलौकिक अनुभव की पूंजी बढ़ते रहना ये बहुत जरूरी है। अगर अलौकिक अनुभव की पूंजी हमारे पास नहीं होती है तो हम स्वयं को खाली या खोखला या एम्प्टीनेस की फीलिंग हमें आती है। तो अभी कोई पूछता है हमें ज्ञान में कितने वर्षों से चल रहे हैं, हम बड़े नशे से कहते हैं 5 साल से 10 साल से 20 साल से। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भी भाग्य की बात है। लेकिन जितने हम बाबा के पुराने बच्चे बनते जाते हैं उतना अलौकिक अनुभव का धन हमारे पास बढ़ता जाता है। तो मैं आत्मा अनुभवी बनी हूं या नहीं कैसा पता चलेगा भाई? हाँ जी, उसकी 5 निशानियां हैं। उन 5 बातों से आपको पता चलेगा कि मैं कहां तक अनुभवी बन चुका हूं। पहली निशानी है, जो अनुभवी आत्माएं होते हैं जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है, उनके चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे दुनिया में जो धनवान होते हैं, धन बैंक में पड़ा होगा, धन घर में पड़ा होगा, लेकिन उनके चेहरे पर धन का नशा दिखाई देता है कि मैं धनवान हूं। तो ऐसे जितना जितना अलौकिक अनुभव का धन बढ़ता जाता है, हमारे चेहरे पर ईश्वरीय नशे की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। और संतुष्टता और संपन्नता की चमक हर कोई देख सकता है। मेरा बाप सागर है, मैंने उससे बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, बहुत अनुभव किए हैं, मैं संपन्न हूं, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। ये पहली निशानी। दूसरी निशानी, अनुभवी आत्मा अपने अनुभव के आधार पर अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाता जाता है। हम देखते हैं कई बच्चे बाबा के बनते हैं, थोड़ा समय चलते हैं, बाद में टूट जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुभव की कमी। और जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है, उनके पास एक कला होती है कैसे अपने जीवन को रोचक और रोमांचित बनाते जाएं, इंटरेस्टिंग बनाते जाएं, कैसे अपने उमंग और उत्साह को आगे बढ़ाते जाएं, ये कला उनके पास होती है। इसलिए कभी भी रूखापन या सूखापन, उदासी उनके पास नहीं फटक सकती है। तीसरी निशानी, अनुभवी आत्मा हमेशा आत्मोन्नति में मगन रहता है, वो कभी भी दूसरों को नहीं देखता है और अपने समय और शक्ति के खजाने को वेस्ट नहीं करता है। अपनी घोट तो नशा चढ़े, ये उक्ति, ये फ्रेज उसके जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देती है। वो अपने में मस्त रहता है, वार्तालाप भी करेगा तो आत्मोन्नति के ही करेगा, इसलिए हर कोई उसके संग में रहना चाहता है, क्योंकि उसके संग में रहने से कुछ न कुछ प्रेरणाएं, कुछ न कुछ अनुभव हमें सुनने के लिए मिलेंगे, आगे बढ़ने के लिए मदद होगी, इसलिए उसके संग में हर कोई रहना चाहता है। चौथी निशानी, अनुभवी आत्मा हमेशा दुआओं का पात्र बनता जाता है। अनुभवी आत्मा जब अपने अलौकिक अनुभव दूसरों के साथ शेयर करता है, तो दूसरों को भी ऐसे गहन सुंदर अनुभव करने की प्रेरणा, साहस, हिम्मत प्राप्त होती है और वो आगे बढ़ते हैं। और जितना जो आगे बढ़ते हैं, उनके दिल से दुआ निकलती है कि इनके कारण मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो दुआओं का पात्र वो बनता जाता है। हमें घर जाने के पहले 3 सर्टिफिकेट लेना है हर एक को, मन पसंद, लोक पसंद और प्रभु पसंद। तो अनुभवी आत्मा को ये 3 सर्टिफिकेट बहुत सहज मिलते हैं। आप सेवा कितना मर्जी करो, लेकिन जब तक आपकी स्थिति पावरफुल नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, स्वयं को आप पसंद नहीं करोगे। तो जितने अनुभव हमारे पास बढ़ते हैं, हम अपने को पसंद करते हैं, प्यार करने लगते हैं, और हम स्वयं अनुभव करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ाते जाते हैं, मदद करते जाते हैं, तो लोग भी हमें पसंद करते हैं। ये बहुतों को आगे बढ़ाता है, मदद करता है, इसलिए अनेकों के दिल की दुआएं मिलती हैं। और तीसरी बात, परमात्मा ऊपर से देखते हैं कि ये मेरा बच्चा, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसका स्वरूप बंद कर अनेकों को बना रहा है, इसलिए प्रभु भी उसको अपने दिल में स्थान दे देते हैं, पसंद कर देते हैं। इसलिए हमें अनुभव की पूंजी को बढ़ाते जाना है। पांचवी निशानी, अनुभवी आत्मा अपने अलौकिक अनुभव के आधार पर निर्विघ्न रीति से संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ता जाता है। कभी भी दुश्मन से वो धोखा नहीं खाता है। अनुभव की पूंजी सफलता की कुंजी, चाबी वो अनुभव करता है। माया की गलियों में भटकता नहीं है। समय का जो अमूल्य खजाना हमें बाबा ने दिया है, उस खजाने को सफल करता जाता है और आगे बढ़ता जाता है, उन्नति करता जाता है। तो हमें अपने में ये 5 विशेषताएं देखनी है। अगर धीरे धीरे ये 5 विशेषताएं बढ़ रही है, तो समझो मैं अनुभवी आत्मा बनता जा रहा हूं। इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद कोई भी अलौकिक अनुभव करना चाहते हैं तो एक शर्त है, बोलो कौन सी है? हाँ जी बोलो। हर कोई अनुभव करना चाहता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, हाँ, बाबा पर विश्वास है जी, समर्पण भाव, अनुभव। जब तक अणु अर्थात बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं होगा। और जैसे स्वयं को बिंदु समझते हैं, अणु समझते हैं, तो आपको अलौकिक अनुभव की खान मिल जाती है। आप पर अलौकिक अनुभव की वर्षा होती रहती है। हम सभी याद की यात्रा पर चल रहे हैं। सभी को बाबा ने पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है। उस गाड़ी को कैसे स्टार्ट करेंगे भाई, बोलो? गाड़ी चलाने वाले भाई लोग कितने आए हैं गाड़ी चलाकर? कार को कैसे स्टार्ट करते हैं, चाबी घुमा दिया, बैटरी स्टार्ट हो गई और कार स्टार्ट हो गई। तो अभी ये जो पुरुषार्थ रूपी कार है उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, याद की यात्रा पर दौड़ाने के लिए? हाँ जी, जब तक स्वयं को स्टार नहीं समझते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, घंटों वहीं खड़ी रहेगी। मैं कौन हूं? स्टार हूं। केवल स्टार नहीं, मैं सुपर स्टार हूं। बाबा सुप्रीम स्टार और हम हीरो हैं, सुपर स्टार हैं। करोड़ों में सिलेक्शन किया है भगवान ने हमारा। तो अभी अनुभवी हमें बनना है, लेकिन कौन सी बातों में अनुभव को बढ़ाना है ये बात स्पष्ट होना जरूरी है। तो ब्राह्मण जीवन में मुख्य 10 बातों में, 10 क्षेत्रों में अनुभवी हमें बनते जाना है जब तक संपूर्णता की मंजिल पर हम नहीं पहुंचते। मुख्य 10 एरियाज हैं, उसमें हमें अनुभवी बनते जाना है, बनते जाना है, बनते जाना है, थकना नहीं है। पहला क्षेत्र, स्वयं को परम धाम निवासी बनने का अनुभव बार बार बढ़ाते जाना है। हमारा घर कौन सा है अभी? हाँ जी, असली घर, मूल वतन हमारा परम धाम है। तो जो हमारा मूल वतन है वहां हमें बार बार जाना है, वहां के वातावरण को, वाइब्रेशन को अनुभव करना है और उस घर पर अधिकार हमें बढ़ाना है। घर आपका है, आप उसमें रहते ही नहीं। ज्ञान परम धाम का है एक बात है, लेकिन वहां जाने का अनुभव मुझ आत्मा के पास बहुत है ये दूसरी बात है। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे कहां याद करो? परम धाम में याद करो। तो घर हमें खींचे। अभी कल आपको घर जाना है तो घर की खींच ऑटोमेटिक होती जा रही है, क्योंकि हमें जाना है घर। तो ऐसे परम धाम रूपी घर भी हमें खींचे, खींचेगा तब जब बार बार वहां हम जाएंगे। ये बहुत सुंदर घर है जहां हमेशा सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है, शांति ही शांति रहती है। वहां हमें बुद्धि से जाना है और वहां के वाइब्रेशन को फील करना है, अनुभव करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? 100% भान के साथ परम धाम में जाना और 0% भान से यहां रहना, ये हमारा लक्ष्य है। तो बार बार हमें परम धाम में जाने का अनुभव करते जाना है। दूसरा एरिया, हमें सूक्ष्म वतन वासी बनने का अनुभव बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। अभी हमारा घर कौन सा है भाई? हाँ जी, टाइटल लेके घूमते हैं, ब्रह्मा कुमारी फलानी, ब्रह्मा कुमार फलाना। तो बाप कौन हो गया? ब्रह्मा हो गया। तो जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो अभी मेरा घर है सूक्ष्म वतन। बार बार हमें सूक्ष्म वतन में जाना है, उसको यूज करना है और उस पर हमारा अधिकार बढ़ाना है। मैंने 91 में गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। दादी जी को पूछा था, आखिर भी वो सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया कैसी है बताइए। मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था तो दादी जी ने बताया था, ये जो साकारी दुनिया है इससे परे एक ऐसी दुनिया है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। जैसे पूर्णिमा के दिन आसमान में एक चंद्रमा रहता है और सारे धरती को श्वेत प्रकाश से जगमगाता है, ऐसे प्रकाश दिव्य प्रकाश वहां हमेशा रहता है। दूसरी बात, देवताओं की जो फरिश्तों की जो भाषा होती है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। संदेशी बहन जब बाबा के पास जाती है तो कैसे वार्तालाप करती है, नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट से। यह है फरिश्तों की भाषा। और तीसरी बात, वहां के कारोबार कैसे चलती है, संकल्प शक्ति के आधार पर चलती है। बाबा अगर संदेशी को कोई भी दर्श बताना चाहता है, एक सेकंड में संकल्प शक्ति से उसको इमर्ज करते हैं और संदेशी बहन को वो दर्श दिखाते हैं और हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मैसेज भेजते हैं। तो बार बार हमें सूक्ष्म वतन में जाना है और उस घर पर अधिकार बढ़ाना है, क्योंकि हम अभी रिटर्न जर्नी पर है। बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति भी करना है तो विशेष सूक्ष्म वतन में हमें करना है। बाबा ने रचा ही है सूक्ष्म वतन उसके लिए। हाँ, तीसरी बात, वैकुंठ वासी बनने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। आप कहेंगे इसकी क्या आवश्यकता है, बाबा ने 80 के लगभग आसपास में मुरलियों में बातें स्पष्ट की है कि सतयुग में अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारी दिनचर्या कैसी होती है, सारी बातें स्पष्ट की है। वो केवल ज्ञान के लिए नहीं की है, वो सतयुगी जीवन हमें, देवी कुल का जीवन हमें अभी अनुभव करना है। देवी संस्कार आत्मा में हमें अभी भरने हैं और वो संस्कार लेकर हम जब परम धाम जाएंगे और जब वापस सतयुग में आएंगे तो उसके आधार पर हमें ऐसे रॉयल परिवार में घराने में जन्म ऑटोमेटिक मिलेगा। तो सतयुग में कैसे हम निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र बादशाह की तरह रहते हैं, कैसे प्रकृति हमारी सेवा करती है, कैसे हम अधिकारी स्थिति में रहते हैं, वो हमें अभी अनुभव करना है। बाबा ने 2 दिन पहले कहा था कि देवताओं के मन में खराब संकल्प नहीं चलते हैं, देवताएं कभी भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तो ये बातें हमें अभी प्रैक्टिकल में अनुभव करना है। मैं वैकुंठ वासी आत्मा हूं, होनहार देवता बनने वाली आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करते जाएंगे तो ये आपके जीवन में स्वतः ही धारण होता जाएगा। चौथा एरिया, स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास हमको बार बार करते जाना है। मुरली में आत्मा की बात जब सुनते हैं तो लगता है बाबा को कुछ सूझता ही नहीं, आत्मा आत्मा ही रटता जाता है। इतने वर्षों से यही बात क्या पड़ी है बाबा को, क्योंकि बाबा ये पहला पाठ पक्का कराना चाहते हैं, क्योंकि यही पहला पाठ है और यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। ब्रह्मा बाबा ने नंबर वन लिया, उसका गुह्य राज भी यही था कि शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक बाबा ने इस अभ्यास को छोड़ा नहीं, करते रहे करते रहे। स्कूल में कौन सा अक्षर पढ़ाते पहला बताओ, हैं जी, अ ब क ड ए बी सी डी। अब हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, तो अ लिखना माना आत्मा समझना आना, ब लिखना माना बाबा को अच्छी तरह से समझना, क माना कर्मों की फिलॉसफी को जानना, ड माना ड्रामा के राज को अच्छी तरह से पहचानना। अब पहला ही अक्षर मुझे नहीं आएगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा भाई। तो कहने का भाव है आत्मा का अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से पक्का करते जाना है। क्या होता है, हम थोड़े से ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो हमें अहंकार आता है, ये आत्मा आत्मा ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं, और इसके कारण आगे बढ़ते जाते हैं और लड़खड़ाते रहते हैं, स्थिति हलचल में आती रहती है। ब्राह्मण संसार में जो भी आत्माएं चमक रही हैं, उनसे अगर आप एक प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई उसका सीक्रेट क्या है, एक ही जवाब मिलेगा, मैंने बाबा के पास आने के बाद आत्मा के पाठ को बहुत घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया, इसलिए इतनी ऊंची स्थिति बनाई। 24 घंटे हमें झूठा वाहन रहता है, मैं देह हूं, मैं बहन हूं, मैं भाई हूं, झूठा वाहन। ऐसे 24 घंटे आत्मा का भान रहे, इतना अभ्यास हमें करना है। कितनी मेहनत करनी होगी अपने से पूछो। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया, जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की तरफ बुद्धि जाती है, याद में टिकती है और पाप खत्म होने लगते, ठीक है। अभी पांचवी बात, ईश्वरीय नशे में अर्थात स्वमान में स्थित होने का अभ्यास हमको अंत तक करते जाना है। सिंहासन बाबा ने हमें दिया है, ये सभा में कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है, होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बनने वाली हैं, लेकिन सतयुग में है। तो जब सिंहासन मिलेगा, सिंहासन मिलते ही जो नशा जो मस्ती जो खुमारी है वो आत्मा में अनुभव होनी चाहिए, वो हमें अभ्यास अभी से करना है। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से अभ्यास किया, मैं नारायण बनने वाला हूं, नंबर वन नारायण बनने वाला हूं, मैं सारी प्रजा का पिता हूं। तो स्वमान में रहना और उसको बढ़ाते जाना, उससे क्या होगा, हम आत्माओं में बहुत रॉयल्टी और रियल्टी बढ़ती जाएगी। मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर के सिंहासन पर हैं, जब वो बाहर विदेश में जाते हैं उनका चेहरा देखो, क्या चाल और क्या नशा। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, बस ना भारत की है ना। अरे मेरा बाप तो तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उसका मैं बच्चा हूं। भाई कितनी बड़ी बात है, प्रैक्टिकल कहने की भाई की बात नहीं, प्रैक्टिकल बात है। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता मेरा बाप है, सारे संसार को भाग्य बांटने वाला मेरा बाप है। तो कितना नशा होना चाहिए भाई। तो नशा आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। ईश्वरीय पालना में हम पल रहे हैं, हर रोज पालना ले रहे हैं और चेहरा बोल ही नहीं रहा है, भगवान की पालना हमें मिल रही। एक स्लोगन लिखो, मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। चेहरा कितना भी बढ़िया सुंदर हो, उस पर मुस्कुराहट नहीं होगी तो कोई देखना नहीं चाहेगा। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। भगवान की पालना हमें मिल रही है, हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट स्पष्ट हो, यह प्रमाण है उसका। तो ये हमें बाबा ने सिंहासन दिया है सोमान का, वो हमें छोड़ना नहीं, चाहे कोई कितना भी हमारा अपमान करें, कितनी भी बड़ी बात हमारे सामने डिस्टर्ब करने के लिए आवे, हमें सिंहासन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत प्राप्तियां कराने वाला ये सिंहासन है। ठीक है ना। तो संपूर्ण ईश्वरीय नशे में संपूर्ण रीति से हमें स्थित रहना है। नेक्स्ट कौन सी, छठवी बात है, परमात्म मिलन का अनुभव परम धाम में हमें बढ़ाते जाना है। बाबा के पास जाकर बैठना है और बैठने का अनुभव हमें बढ़ाते जाना है। शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर के कंठे पर जब मैं आत्मा बैठती हूं तो परम सुख की, परम आनंद की अनुभूति मुझे होती है। तो उसकी हमें गहराई बढ़ाना है। नए बाबा के बच्चे हैं तो 100% भान में से 10% 20% आपका परम धाम में बाबा के साथ होगा। हमें क्या करना है, 10 से 20 वहां, 30 वहां, 40 वहां, 80 वहां, 100 वहां और 0 यहां, ये हमारी मंजिल है। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत अवस्था में थे उन दिनों में कोई बच्चा बाबा से मिलता था तो ऐसा लगता था बाबा की आंखों से बाबा केवल तन से यहां बैठे हैं, लेकिन मन से पूर्णतया परम धाम में बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा की आंखें बताती थी बाबा यहां नहीं है। ठीक है ना। इसलिए योग की गहराई बढ़ाना अर्थात परम धाम में बाबा के संग में जास्ती से जास्ती भान से बैठना। इसलिए हमेशा योगियों की आंखें आधी खुली दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, योगी इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख बहुत दूर, कहीं दूर अपने इष्ट की याद में खोई है, उनकी आंखें बताती है यहां नहीं है। योग को योग कहते हैं ना, क्यों कहते हैं भाई योग, को योग क्यों कहते हैं? हैं जी, योग का उल्टा क्या होता है? गयो। देखो ये भाई जी, हम बस बाबा के पास बैठ गए, आंखें बता रही हैं। याद को याद क्यों कहते हैं भाई? याद उल्टा क्या है? दया। दया के सागर के बच्चे हैं और खुद पर भी दया नहीं करते। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतनी स्वयं पर दया करते हैं, ठीक है ना? सातवीं बात, सातवां एरिया है फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें अंत तक बढ़ाते जाना है। हमारा ये जो ब्राह्मण पुरुषार्थी जीवन है उसका लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना। जब तक फरिश्ता नहीं बनते हैं तब तक हम देवता नहीं बन सकते। तो लक्ष्य हमारा है संपूर्ण फरिश्ता बनना, केवल फरिश्ता नहीं। तो जैसे जैसे फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के लक्ष्य तक हम पहुंच सकेंगे। फरिश्ते की दो निशानियां होती है मुख्य। पहली निशानी, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया या ड्रेस पहनी हुई है, ये सदा अनुभव करना। और दूसरी निशानी है फरिश्ता, फर्श से रिश्ता नहीं, फर्श वासियों से रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते अर्शवासी परमात्मा के साथ हो, वो है फरिश्ता। तो इन दोनों बातों पर हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास बढ़ाते जाना है। दो वर्ष पहले बाबा ने स्पष्ट कहा था कि अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों बाबा ये चाहते हैं? क्योंकि बहुत निकट में हम बाबा के बच्चों को फरिश्ता स्थिति के द्वारा बहुत सेवा करनी होगी, बेहद सेवा करनी होगी। केवल गुजरात की ही सेवा नहीं करना है, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है, उसके लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाना है। क्योंकि फरिश्ता के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, सारे विश्व का वो भ्रमण कर सकता है, जहां चाहे सेवा करने उड़ने लगता है ना? तो इसलिए बहुत सुंदर फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा है ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। ये स्थूल शरीर है, मेरा फरिश्ता स्वरूप कैसा है उसका आकार, ये जो स्थूल शरीर का आकार है ऐसा ही उसका आकार है। केवल अंतर है ये स्थूल है, ये लाइट दिव्य प्रकाश का लाइट का शरीर है। और ये तीन बातों से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से, ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी मुझ फरिश्ते ने धारण किया है और मेरी बुद्धि तार निरंतर परम धाम में बाबा के साथ जुटी हुई है, ये है मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, मुझे सेकेंड करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, जब मेरे समान बन जाओगे तो मैं आपको सेकेंड कर। कोई इंतजार आपका कोई गेट पर कर रहा है, आप चैन से नहीं बैठ सकते, यहां मुझे वहां जाना है। तो मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरी इंतजार कर रहा है, तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता स्वतः ही आती जाती है, समझा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हम, मैं हूं फरिश्ता, वो करना है। उसके लिए तीन प्रयोग आपको सारे दिन भर में बार बार करने हैं। आप देखना आपके फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी, गारंटी है। मैंने इसका बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया है। पहला प्रयोग, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने ये स्थूल काया धारण की है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं, आपका अनुभव बहुत साधारण होगा। अपने भाव को थोड़ा सा श्रेष्ठ बना दो। दूसरा प्रयोग है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहनी है, लाइट की ड्रेस पहनी है और लाइट जमीन पर चल रहा हूं, बहुत सुंदर अनुभूति आपकी होगी। और तीसरा प्रयोग करना है, मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने रुई का शरीर, कॉटन का शरीर धारण किया है और कॉटन की जमीन पर चल रहा हूं, बहुत हल्के फुल्के होकर आप चलेंगे, देखने वाला आपको फरिश्ता ही अनुभव करेगा। तो कर्म करते हुए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है, ठीक है। बाद में आठवीं बात, हमें भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। सर्व संबंधों की अनुभूति करना, एक संबंध को भी नहीं छोड़ना है। आप कहेंगे भाई क्या जरूरत है इस, हम अपना जो प्यार 100% है वो बाबा के तरफ एक संबंध के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सर्व संबंधों की अनुभूति करने की क्या आवश्यकता है, बताइए क्या कारण है इसका, क्यों जरूरी है ये। कोई संबंध मेरी बुद्धि खींचता है, किसी के साथ मेरा लगाव है, वो संबंध अगर बाबा के साथ अनुभव करते हैं, वहां से बुद्धि डिटैच होती है, बाबा से जुड़ जाती है, वो तो अच्छी बात है। फिर भी हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करना ही है, बढ़ाना ही है। क्या राज है इसके पीछे बताइए, मोह नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा, हाँ जी, खिंचाव नहीं होगा, आसानी से डिटैच होंगे, बहुत अच्छी बात है। देखो हम बाबा के बच्चों ने 84 जन्म लेने हैं ना भाई, और उसमें हमारा रोल अलग अलग होगा। आधे मेल के और आधे फीमेल के होते हैं, ये बाबा ने बताया है, लेकिन रोल हमारा अलग अलग होगा। जो रोल हमें मिलेगा वो हमें बजाना पड़ेगा, लेकिन वो संस्कार आत्मा में अभी हमें भरने हैं। कैसे भरेंगे, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को बढ़ाते हुए वो संस्कार आत्मा में स्वतः ही भर जाएगा, ये उसके पीछे राज है। क्योंकि बाबा को पारसनाथ कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, पा रस नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं, सर्व संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं, इसलिए बाबा को पारसनाथ कहते हैं, ठीक है। नौवा एरिया है, हमें हर गुण और हर शक्ति का अनुभव करने का बढ़ाना है अनुभव। अष्ट शक्तियों का अनुभव मुझे करना है, एक शक्ति भी नहीं छोड़ना है। और जो भी दिव्य गुणों की लिस्ट है सारे गुण मुझे धारण करना है। हमें धोखे में नहीं रहना है। सर्व गुणों का सर्व शक्तियों का ज्ञान मेरे पास तो है लेकिन अनुभव उसका होना जरूरी है, नहीं तो कहीं पर भी हम धोखा खा सकते हैं। इसलिए कोई गुण मेरे में नहीं है, मिस है, गुण की कमी है, तो उसको विशेष धारण करने के लिए कुछ मास अभ्यास उसका करना है। वो दिव्य गुण रूपी फल मेरे जीवन रूपी पेड़ पर लगा हुआ हो, इसलिए बार बार हमें चेक करना है कोई ऐसा गुण तो मैं मिस नहीं कर रहा हूं, कोई ऐसी शक्ति की अनुभूति तो मैं मिस नहीं कर रहा हूं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, क्या है, सर्व गुण संपन्न बनना, सर्व शक्तियों से संपन्न बनना, ये हमारा लक्ष्य है। अष्ट शक्तियों का भी प्रयोग सारे दिन भर में कर्म करते समय हमें करना है। बाबा से अमृत वेले शक्तियां लेना है, नुमा शाम के समय शक्तियां लेना है और उन शक्तियों का प्रयोग हमें सारे दिन भर में कर्म क्षेत्र में करना है। तो धीरे धीरे शक्तियों का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और दसवां एरिया, मनसा सेवा करने के अनुभव मुझ आत्मा के पास होने जरूरी हैं, क्योंकि आगे चलकर केवल मनसा सेवा का ही बोलबाला होना है। अभी देखो कोरोना काल में हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, तो आगे चलकर परिस्थितियां और बिगड़ती जानी हैं। और बाबा ने भी इशारा दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, केवल मनसा के द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं की सेवा करनी होगी। मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करना। रिटेल बिजनेस करने का समय पूरा हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, वर्ल्ड वाइड होलसेल स्पिरिचुअल बिजनेस करने का समय चल रहा है। अभी हम मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में संकल्प होता है, पता नहीं इसमें मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ मनसा सेवा करते हैं, उनको सफलता मिलती है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा डाउट हमारे मन में क्यों आता है बताइए, निश्चय की कमी। हाँ जी, ये डाउट इसलिए आता है क्योंकि मनसा सेवा करने का साधन इतना पावरफुल नहीं है। दूसरा कारण, मनसा सेवा करने के अनुभव मेरे पास इतने नहीं है, इसलिए ये डाउट मेरे मन में आता है। तो हमें ये चेक करना है, हमारी दादियों ने ये मनसा सेवा का साधन कैसे प्राप्त किया है। सबसे पहले उन्होंने कर्मणा सेवा खूब की, यज्ञ की, बहुत आत्माओं की दुआएं प्राप्त की, उनके बोल में बल आ गया, वाणी में वीणा बहने लगी, उसके द्वारा अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान दिया और दुआएं मिल गई, उसके बाद उनकी मनसा शक्तिशाली हो गई। तो कर्मणा के द्वारा कुछ सैकड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, वाचा के द्वारा कुछ हजारों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, और मनसा के द्वारा लाखों करोड़ों आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसलिए ये बेहद की सेवा करने का साधन मेरे पास होना चाहिए। साधना मुझे कैसी भी करनी पड़े, लेकिन ये साधन मैंने जुटाकर रखना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। क्योंकि आपको ये गोल्डन चांस मिला है ये बाबा के वरदानी भूमि में आकर तपस्या करने का, इसलिए बहुत अच्छी तरह से योग के गहन अनुभव आप जमा करते जाएंगे तो ऐसी बेहद सेवा, मनसा सेवा आप कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चलकर आपको शांति शक्ति का दान बहुत देना होगा। बाबा कहते हैं मैंने आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना है, एक कौड़ी खर्च नहीं करना है और मैंने बादशाह बनाना है। कैसे बनेंगे भाई, हैं जी? बाबा कहते कुछ नहीं करो, मेरे पास परम धाम में आकर बैठ जाओ, सागर के किनारे बैठ जाओ, मेरे से खजाने लेते जाओ और सारे संसार की आत्माओं को देते जाओ। तो ये दाता का गुण आपको सतयुग में, त्रेतायुग में राजय के सिंहासन पर बिठा देगा। बन गए ना भाई, बिन कौड़ी बादशाह बन गए ना। माल बाबा से लिया, हमें अपने जेब से खर्च नहीं किया, बाबा से लेते रहे, आत्माओं को देते रहे। तो ऐसी मनसा सेवा हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ाना है। ठीक है भाई, तीन 10 बातों में हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव बढ़ाते जाना है और अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाने की तांत सदा लगी रहे। ये धन मेरे पास बहुत हो, ठीक है ना? तो अभी हम बहुत सुंदर अनुभव करने जा रहे हैं योग का। करने चाहते हैं भाई? कौन करना चाहता है? सभी करना चाहते हैं। अभी बहुत सुंदर योग की अनुभूति हम करेंगे। सीधा बैठेंगे, सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे और एकदम बाबा की याद में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है ना? फ्री डायरी पेन सब और नीचे रख दो, एकदम फ्री आजाद बन जाओ और बाबा की मस्ती में हो जाएंगे। नीचे रखो सब। चलिए, ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मजात्मा रूपी चैतन्य ज्योति के ओर बहुत सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का ओरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मैंने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मुरली में मेरे भाग्य के गीत गाते थकते ही नहीं है। मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं आत्म ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है। मोज आत्म ज्योति ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। फरिश्तों के शहंशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सकीला दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल पांच हजार वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो, जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मीठे बच्चे, कभी मसीह परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान साकार रूप में टीचर बनकर मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो दूर देश से हर रोज आकर मुरली द्वारा मुझे ज्ञान की गुह्य राज बड़ी सरलता से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, इससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने सिर पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। वरदानी मूरत बनते रहो। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि बल से दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। मैं आत्म ज्योति उड़ती हुई दिव्य ज्योति धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई। कितना सुंदर है यह मेरा दिव्य ज्योति धाम, मेरा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा स्वीट साइलेंस हो, मेरा मूल वतन। मेरी प्राणों की प्राण, मेरे प्राण नाथ, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूँ, निहार रही हूँ, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा बाबा मैं आत्म ज्योति दुख के सागर में गोती खा रही थी, चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अपने दिल तख्त पर बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, अथाह सागर हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में, योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप दग्ध हो रहे हैं, दग्ध होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। स्वच्छ सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है यह।